आज की दो बातें। अल्हम्दुलिल्लाह कफा, अल्हम्दुलिल्लाह कफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन अस्तफा, अम्मा बाद। पिछले चंद दिनों से सिलसिला या नक्शबंदिया के मामूलात बयान किए जा रहे थे, और पिछली जो चंद मजालिस हैं उनमें इन मामूलात में राबता शह के ऊपर गुफ्तगू की गई। जिन शेख से इस्लाह का ताल्लुक कायम किया है, जिनसे बैत की है, उनसे राबता रखना जरूरी। बल्कि मशाइख ने फरमाया कि तमाम मामूलात में सबसे अहम मामूल यही है कि सालिक जो है वो शेख से राबता रखे। और सबसे अहम मामूल इसको क्यों कहा गया? क्योंकि जो शेख से राबते में है वही मामूलात करता है, जो शेख से राबते में है उसी की बातिन के अमराज की इसलाह होती है। तो इसलिए राबते में नहीं तो आमाल भी नहीं और इसलाह भी नहीं, अकली बात भी है और मशायख से मनकूल बात भी है। और पिछली चंद मजालिस में हम इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे कि जी मशायख की सोहबत में जब आए सालिक तो पाबंदी से आए भी सही, मगर उसके बारे में, शेख के बारे में अकीदत और गुमान भी अच्छा रखे। हर वक्त बदगुमान होना, हर वक्त ये सोचना कि ये क्यों कर रहे हैं और वो क्यों कर रहे हैं, इससे फिर इंसान का वो जो जज्बा है ना आगे बढ़ने का, वो ठंडा हो जाता है। इसी तरह मशायख के मुख्तलिफ आदाब जो किताबों में बयान किए गए, उनमें से दो तीन आदाब पिछली चंद मजालिस में के ऊपर गुफ्तगू की गई, और उसमें से एक अदब ये था कि सालिक जो है वो शेख की डांट डपट से भी तंग ना हो। कि ये डांट डपट करना ये एक टूल है जो शेख इस्तेमाल करते हैं सालिक के नफ्स को सीधा करने के लिए। एक डांट डपट तो तब ही होती है कोई गलती की है तो डांट पड़ती है, एक होती है कि सोचा हुआ होता है कि जी इतनी डांट तो देनी है इसे ताकि जर्फ देखा जाए। और बहुत सारी मिसालें इस डांट डपट की किताबों में मौजूद है, बेजा डांट डपट की मिसालें भी मौजूद है, जिससे पता चलता है कि ये डांट डपट करना सिर्फ गलती में डांट नहीं थी, बल्कि गलतियां तो सालिक आमतौर पर शेख के पास आके कम नहीं करता, जो शेख कहते हैं वो कर ही देते हैं सालिक। ये जबरदस्ती की डांट होती है, और ये इसलिए होती है कि सालिक का जर्फ बढ़े, उसका सबर बढ़े। और सबर जो है वो अल्लाह वालों की निशानियों में से सबसे बड़ी निशानी है, और खास तौर पे मशायख जब इजाजत व खिलाफत देते हैं किसी सालिक को तो जरूर चेक करते हैं कि ये तबीयत के खिलाफ चीजें होने पे क्या रिएक्शन है उस सालिक का। चुनांचे हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अकदस, हजरत हाजी इमदादुल्ला महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत में आपने 40 दिन गुजारे। अब इस दौरान आपने खूब जिक्र मामूलात अजकार तहज्जुद इन चीजों का की पाबंदी की। हजरत को किसी ने दावत पे मदऊ किया तो हजरत ने फरमाया मियाँ रशीद अहमद आप भी साथ चले। अब उस दावत पे बहुत सारे उलमा और उस वक्त के एक और बुजुर्ग थे हजरत मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, वो भी उस दावत पे मदऊ थे। काफी सारे मशायख तो शरीफ फरमा थे और उलमा भी थे, और बहुत ही पुर तकल्लुफ दावत की गई। हजरत हाजी साहब तशरीफ लाए और उनके साथ हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह जो हजरत के मुरीद भी थे, हजरत ने उनको कहा कि जी आप साथ चलें। उस पुरतकल्लुफ दावत में जब बैठे तो बैठते ही हजरत ने एक प्लेट में कुछ दाल डाली और दो रोटियां डाली और कहा मियां रशीद अहमद ये लो और बस कोने पे जाके बैठ खा ले। लोगों ने थोड़ा सा ऑड महसूस किया कि ये थोड़ा सा इतने बड़े आलिम की शान के थोड़ा सा मुनाफी लग रहा है, मगर ये सबका मकसद जो था वो यही देखना था कि जी तबीयत के खिलाफ चीजों पे रिएक्शन क्या होता है। हजरत ने देखा कि मैंने उनको इस तरह से कोने पे बिठाया और इस तरह से पुरतकल्लु दावत में से कुछ खाने ना दिया, बल्कि बस एक दाल और रोटी दाल के मैंने कहा साइड पे बैठ जाओ, तो उस पर रिएक्शन इतना कोई नहीं आया, लगा ऐसा कि इसको माइंड नहीं किया। वरना आम बंदा जो होता है, जो सालिक जो इस ड्रिल से गुजरा नहीं होता है, वो कहेगा जी लिहाज ही नहीं किया इन्होंने, अदब कहाँ है, आलिम की वैल्यू कहाँ है, ये सारी बातें जहन में आएंगी। मगर ये तो एक इसलाह का मामला, और फिर बेजा किया अगर आप देखें तो, मगर बेजा नहीं था, इसके पीछे एक बड़ा मकसद होता है। बैठे वो खा रहे थे तो खाते खाते हजरत ने फरमाया कि मियाँ रशीद अहमद, दिल तो चाहता था कि तुम्हें जूते में बिठा देता, मगर तुम्हें अपने दस्तरखान पे बिठा। ये भी कोई ऐसी ना भी कहते, तो मतलब आम अगर अंदाज में देखा जाए तो ये बात ना भी करते, तो अगर इरादा था भी सही ऐसे करने का तो भी ना कहते, ये तो लड़ाई वाली बात है। तो उसके पीछे एक मकसद था, ये चेक करना था कि तबीयत पे जो चीज गिरा गुजरती है उस पर रिएक्शन क्या है। तो हजरत गंगोई रहमतुल्लाह ने जब ये सुना ना कि शेख ने फरमाया कि जी दिल तो चाहता कि तुम्हें जूतों में बिठाता मगर अपने दस्तरखान में बिठा लिया, तो उन्होंने आगे से जवाब दिया हजरत मैं आपके जूतों में भी बैठने के काबिल नहीं हूँ, आपने वाकई मेहरबानी फरमाई अपने दस्तर पर बिठा दिया। उस वक्त हजरत ने फिर उनको इजाजत और खिलाफत अता करने की, यदि जो मकसद था वो हासिल हो गया, इस सारे जिक्र अस्कार सोहबत का मकसद जो था वो ये कि है कितना जर्फ अंदर, और जो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाता है वो अल्लाह वाला या साहिब निस्बत तो दूर की बात, उसका तो ईमान खतरे में आ जाता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल गज़बु युफ़सिदुल ईमान, गुस्सा जो है वो तेरे ईमान में फसाद पैदा कर देता। तो मशायख जानबूझ के बेजा डांटते हैं सालिकीन, आमतौर पे तो मोहब्बत की वजह से शेख के हर काम ही पूरा शायद कर ही देते हैं, मतलब कभी कोताही होती होगी, डांट इतनी बनती नहीं है, मगर सालिकीन को मशायख की एक तरतीब रही है जी डांट डपट करके उनको चेक करते, ये एक टूल होता है जिससे पता चलता है कि सालिक कहाँ खड़ा है। तो इसलिए मशायख के आदाब में से अदब यही कि सालिक जो है वो शेख की डांट डपट से तंग ना हो, कोई बोझ जहन पे डाल दिया हो तो उससे भी तंग ना हो। बल्कि किताबों में तो ये भी लिखा हुआ है कि शेख अगर सालिक को चौराहे पे खड़े होकर जूता मारे तो वो जूता उठा के वापस दे कि हजरत अगर एक और मारना है तो एक और मार ले। ओवरऑल रिलेशनशिप सालिक और शेख का सिर्फ खुश्क अकीदत ना हो, गहरी मोहब्बत वाला होना चाहिए। जितनी इस रिलेशनशिप में इस ताल्लुक में मोहब्बत होता है उतना ज्यादा सालिक जल्दी इस रास्ते पे सफर करता है। हदीस पाक में आता है कि कयामत के दिन 7 किस्म के लोगों को अर्श का साया मिलेगा, और उसमें से दो वो लोग होंगे जिन्होंने बाहम अल्लाह के लिए मोहब्बत की, जिनके रिश्ते की बुनियाद और जिनकी मोहब्बत की बुनियाद और कुछ नहीं था, कोई दुनियावी गर्ज नहीं था, सिर्फ अल्लाह की वजह से ये मोहब्बत थी। तो ये जो शेख और सालिक का ताल्लुक, ये 100% अल्लाह के लिए है। सालिक भी यही चाह रहा होता है कि मैं किसी तरह से अल्लाह तक पहुंच, और शेख भी यही चाह रहे होते हैं कि ये किसी तरह से अल्लाह तक पहुंच जाए। तो इसलिए इसके अंदर कोई और गर्ज नहीं, और ये मोहब्बत का ताल्लुक होगा तो सालिक आगे भी बढ़ेगा, और ये मोहब्बत का ताल्लुक हुआ तो कयामत के दिन की भी खुशखबरी है, अल्लाह ताला हमें मशाइख से फैज याब होने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलाम अला अनबिया, اللهم نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين، جزاكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.